अगला फायदा क्या है? अल्लाह ताला की मदद का पाना, यानी उस बंदे को की मदद आती है जो अदा करने की नियत रखता है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसको मुहाफिज मिल जाता है, उसका मुयस्सर आना। इमाम अहमद ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत नकल की, बिला शुबा वो कर्ज थी, इनसे कहा गया माला की वलिदैन, तेरा और कर्ज का क्या काम, यानी तुझे कर्ज लेने की क्या है? जवाब दिया, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि आप इस हदीस को मेरे साथ पढ़िए और इसको हाईलाइट करें, इंशाल्लाह ये आपका बिलीफ बनती जाएगी। मा मिन अब्दिन कानत लहू नियतुन फी अदाई दैनिही इल्ला कान लहू मिन अल्लाही अज़्ज़ वजल्ला औनुन, फअना अल्तमिसु ज़ालिकल औन। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि इसकी कर्ज अदा करने की नीयत हो मगर अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से इसकी मदद होती है, मैं तो इसी मदद की जस्तजू में कर्ज लेती हूँ। और एक रिवायत में कान मिनल्लाहि औनुन व हाफिज, कि उसका अल्लाह ताला की तरफ से मददगार और हाफिज मुकर्रर हो जाता है। तबरानी की रिवायत में कान लहू मिनल्लाहि औनुन व सबब लहू रिज़्क़न, के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है और वो इसके लिए रिज़्क़ का सबब बना देते हैं। ठीक है, तो क्या चला कि यकीन होगा आपको तो अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, फिर एक और फायदा कि बेहतरीन लोगों, अब ये उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, क्या कि जब आप कर्ज अदा करना चाहते हैं तो अल्लाह सुबहान ताला आपकी मदद कर देते हैं और आपको अल्लाह ताला की तरफ से उसमें सहूलत मिलती है। आप दूसरा देखेंगे कि बेहतरीन लोगों का अदायगी में बेहतरीन होना, ये सेकेंड पार्ट है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जब कोई नियत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत नकल की, बिला शुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन खियारन नास अहसनहुम क़दान, यकीनन बेहतरीन लोग अदायगी में सबसे अच्छे होते हैं। देखिए, आप कुछ लोगों के बारे में एक अपने जहन में गुमान रखते हैं कि अल्लाह इनसे हमारा माना होते हैं, किसी किस्म का भी वास्ता लेन देन में तो खास तौर पर आप कहते नहीं, इनसे मैं नहीं डील कर सकती, आप किसी और को भेज दें, हैं तो ये बदनसीबी की बात है। और कुछ है ईजी गोइंग, उनको बेचना है ले लेंगे, देना है ले लेंगे, यानी लाइट माइंडेड लोग जो हैं वो अल्लाह को पसंद है। यकीनन बेहतरीन लोग अदायगी में सबसे अच्छे होते हैं, और जो शख्स बर वक्त अदायगी ही ना करे वो अदायगी में सबसे अच्छा होकर बेहतरीन लोगों में किस तरह शामिल हो सकता है? तो नियत करें कि जो लिया है उसको देना है। फिर तीसरी चीज़ है अदायगी में आसानी करने वालों से अल्लाह की मोहब्बत का होना, यानी मोहब्बत इलाही का हसूल है। क्या बात, क्या आप अपने कर्जों को अपने अमानतों को वापस करना चाहते हैं, जो लोगों से लिया है उसको देना चाहते हैं? कैसे? इमाम तिर्मिज़ी और इमाम हाकिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल की, बिला शुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला बेचने खरीदने और अदायगी में आसानी करने वाले से मोहब्बत करते हैं। हमारे यहाँ क्या मारूफ है? बारगेनिंग, 10,000 से चीज शुरू करते हैं और आपको 1,500 की देके चले जाते हैं। आप सोच में पड़ते हैं, नहीं ये 1,500 भी मैंने ज्यादा ही दिया, इसने 1 में भी दे देनी थी, अल्लाह की कसम बाजी इतने की नहीं। और वो बाजियां भी फिर अल्लाह उनको माफ कराएं, अदाएं दिखा दिखा कर चिरती हैं, कितने की लाई आप, कितने की लाते हैं, मैं इतने की लाई, आप अपनी मुस्कुराहट भी तो बेच के ही साथ, वो आपके साथ इंजॉय भी तो कर रहा था बात करते हुए। तो लिहाजा हमेशा सीधी बात करें, ये बार्गेनिंग स्टाइल इस्लाम का स्टाइल नहीं है, कमी का बेशी का। अगले की हैसियत भी आपको कम पड़ता है, आप कम दे दें, मैं बाकी अपने से दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो एक और बात है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी चाहिए। खरीदो फरोख्त और अदायगी में आसानी करने वाले की शान और अजमत किस कदर बुलंद है कि कायनात के खालिक और राज़िक अल्लाह ताला इससे मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाइए, और बिला शुबा शक बर वक्त कर्ज अदा ना करने वाला अदायगी में आसानी की बजाय पेचीदगी और परेशानी का सबब बनता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करें। बात सच है ना, आप अगर कोई अदायगी नहीं करते तो वक्त के साथ साथ मुश्किल हो जाती है ना, दुनियावी एतबार से तो फौरन ऐड होके आ जाता है, वो तो खुश होंगे। मैं जब यहाँ आगे आखिरी टॉपिक में आएगी ये क्रेडिट कार्ड्स की बात, लेकिन मुझे नहीं पता था क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं ना, तो मैं सोचती थी अमेरिका इतने अच्छे हैं, जब मैं नई नई आई तो मैंने देखा आज मेल में ये कार्ड आ रहा है, आज वो आ रहा है, हमसे कार्ड लें भाई, इस पे कि आप इस पैसे खर्च करें बाद में बिल दे दें, तो मैं कहती थी कितना खुदा का खौफ है इनको, पाकिस्तान में तो कोई अपना सगा नहीं था, आप ले लें एक माह दे बाद दे दें। तो भाई ये चक्कर क्या, भाई चक्कर ये है कि वो कहते हैं आप खर्च करें और आप हमें अदा। तो मैंने इन्हें कहा फिर आप तो इनको जहर लगते होंगे, आपने तो आज तक इनको एक पैनी का बिजनेस नहीं दिया। इनका काम तो क्या ना कि आप ना दे सकें तो वो इंटरेस्ट चार्ज करें, राइट और रॉन्ग। तो जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और अपना क्रेडिट पूरा वापस पे वक्त पे पैसे देते हैं, तो उन्होंने तो इनको आज तक तो कोई बिजनेस नहीं दिया, अंडरस्टैंड करें। तो ये जरूरत है कि इन चीजों को देखा जाए कि जब कोई बंदा इनको ना देगा तो ये उससे खुश होंगे, और जो दे देगा वक्त पे अदा करेगा ये तो उसके लिए परेशान होंगे। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं। इफराते जर की सूरत में कर्ज वापसी के लिए मेहर। इफराते जर किसको कहते हैं? दौलत की कसरत। आज के दौर में आप कह लीजिए कि इकोनॉमिक डिसऑर्डर, कभी आप सुनते हैं ना किसी मुल्क में उसकी करेंसी बढ़ गई, कभी कम हो गई, डॉलर का रेट बढ़ा कम हुआ, क्रोन का रेट कहाँ ऊपर था कहाँ नीचे चला गया, आगे में नहीं पता, राइट। ये चीजें हैं। तो इस सूरत में क्या होगा? कर्ज की अदायगी के हवाले से उभरने वाले मसाइल में एक इफराते ज़र, इन्फ्लेशन कहते हैं इसको बेसिकली, बतौर कर्ज दी हुई रकम कुव्वत खरीद आमतौर पर कम होती रहती है। 1 लाख रुपए से जिस कदर अशियाज खरीदी जा सकते हैं, इनकी मकदार गुजश्ता साल 1 लाख रुपए के इवज खरीदी जाने वाली चीजों के मुकाबले में काफी कम है, राइट। पिछले साल तक 1 लाख में ज्यादा चीजें आती थी, आज 1 लाख में कम चीजें आती हैं। इसी तरह गुजश्ता साल 1 लाख रुपए कर्ज देने वाला शख्स आज 1 लाख रुपए वापस लेने की सूरत में मादी तौर पर खसारे में रहता है। समझ आ गई ना? डिवेल्यूएशन ऑफ मनी जो होती है, तो इस बारे में क्या है? बाज़ लोग इस खसारे की तलाफी की खातिर कर्ज ख्वाह को दी हुई रकम से ज्यादा लेने का मुस्तहक ठहराते हैं, और इस इजाफी रकम का तयन कर्ज की वापसी की मुद्दत के तनासुब से पहले ही कर लिया जाता है। बात समझ गए कि भाई आप किसी को कर्ज दे रहे हो, 1 लाख है तो आपने 1 ही लाख वापस करना है अगले साल। अगर आप 1 लाख 1 हजार करेंगे तो 1 हजार क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, सूद होगा। कुछ लोग ये फ्ली पेश करते हैं, ये शुभ अश्काल है कि देखें ना फिर 1 लाख की डिवेल्यूएशन भी तो हो गई। पहले 1 लाख में मिसाल फ्रिज आ जाता था, तो अब तो 1 लाख 10 हजार में आता है, तो मैं फिर 10 हजार ऊपर इसलिए ले रहा हूँ कि अब मैं उसका फ्रिज ले लूँ। क्वेश्चन समझ आ गया? अब उसका जवाब सुनिए। दो नुकतों पर ये बात करते हैं। नंबर एक, कर्ज की रूह ईसार है। अगर आपके अंदर ईसार नहीं है ना, ईसार लफ्ज़ की रूह क्या है, कोई देख के इसके रूट को बताएगा? उर्दू में कितना आम लफ्ज है ईसार? असर, असर कहते हैं निशानी को, मा कदम आसार हूं। ईसार क्या होता है कि बंदा अपने अच्छे आसार छोड़ना चाहता है, सत्र हुआ इसके अंदर। कर्ज को अपने मुसलमान भाई के साथ तावन करते हुए इसके लिए अपने माल के हक के इस्तेमाल से सकाराना तौर पर दस्तबरदार हो जाता है, और इसके साथ साथ वो जिमनी तौर पर अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करता है। जिमनी तौर पर जिमन किसको कहते हैं? साइड नोट कह लीजिए, उसके अंडर जो चीज आती है कि अफराते जर की बिना पर बतौर कर्ज दी हुई रकम की कुव्वत खरीद की कमी को भी वो बर्दाश्त करेगा। इस सारे तर्ज अमल में इसका मुतमाहे नजर यानी नजर है रजाए इलाही का सुलह। बात वाज है, आप कर्ज इसलिए दे रहे हैं ना कि आपको सवाब हो और आपके भाई की जरूरत पूरी हो जाए, ये कोई कारोबार थोड़ी है, पहली वजह। दूसरी चीज, अगर कर्ज ख्वाब मस्कूरा बाला बात से भी मुतमईन ना हो और इफराते जर की बिना पर बतौर कर्ज दी हुई रकम की कुव्वत खरीद में कमी की तलाफी के लिए असल रकम से ज्यादा के तकाजे पर इसरार करे, तो इससे कहा जाएगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा, कि आम हालात में कर्ज देना मुस्तहब होता है, रिकमेंडेड, पसंदीदा, लेकिन कर्ज की बिना पर असल रकम से ज्यादा लेना इंतहाई संगीन गुना, अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग और हराम है। लिहाजा आप इस मुस्तहब काम को छोड़िए जो कि आपके लिए हराम के इर्तकाब का सबब है, यानी ऐसे शख्स को फिर ये कहें कि आप हमें कर्ज ना दें। बात समझ गए? एक की आड़ में आप एक हराम काम पे आ गए। एक नेकी भी वो जो मुस्तहब है, फर्ज तो नहीं है ना किसी को आप करें, आपकी मनी है आप ना दें, लेकिन अगर आप उस पर 1 लाख पे 1 हजार ऊपर लेंगे तो वो सूद होगा, तो हराम ना। तो फिर ऐसे बंदे से कहिए कि ठीक है आपसे हमें नहीं लेना। बात समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगली चीज, अदायगी कर्ज के लिए कबल अज वक्त तैयारी, यानी अगर आप नियत है कर्ज अदा करने की तो फिर आप उसके लिए पहले से तैयारी करेंगे। आपने तवज्जो इस तरफ भी करवाई कि कर्ज की बर वक्त अदायगी की खातिर तैयारी पहले से की जानी चाहिए। इमाम बुखारी ने हजरत अबू जर से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था जब आपने जबले उहद देखा तो फरमाया, अब आप देखिए पहाड़ को देखकर क्या कह रहे हैं, मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि वो मेरे लिए सोने का हो जाए और इसमें से मेरे पास 3 दिन से ज्यादा एक दीनार भी बाकी रहे, सिवाय इस दीनार के जो मैं कर्ज की अदायगी के लिए तैयार रखूं। अल्लामा आइनी ने इस हदीस की शरह में लिखा कि इसमें कर्ज और इसकी अदायगी के लिए तैयारी के अहतमाम का पता चलता है। बात समझ गए, पैसा आप अपने पास रखना पसंद नहीं करते थे लेकिन कर्ज की अदायगी के लिए पैसे को जमा करना पसंद करते थे। तो पता क्या चला, इसकी ख्वाहिश रखनी चाहिए, हमारे दिल में इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि हमने ये काम करना। इसी तरह आप खुद देखिए, अब ये तो नबी सल्लम की बात थी, अब अपने ऊपर प्रैक्टिकली लीजिए कि आप कर्ज की अदायगी करना चाहते हैं तो वक्त से पहले उसकी तैयारी कैसे करें। फिर वही बात करूंगी कि कर्ज नॉर्मल तो वो कर्ज होता है कि एक तो दिखता नहीं है, एक तो वो दिख रहा है ना कि सिंपल कर्ज है, लेकिन अभी आप इसको अगर दूसरे कर्ज से लें, मिसाल फी जमाना जिसको लोग कहते हैं जी महीना खत्म होगा तो मैं किस्त दें, घर की किस्त, गाड़ी की किस्त, सोफे की किस्त, टेलीफोन की किस्त, कुर्सी मेज, मैंने तो सुना है लोग बर्तन तक किस्तों पे लेते हैं और इस तरह के महीने, आप बताएं महीने का $4,000-5,000 भी घर में आ गया तो वो तो किस्तों में चला जाएगा। और अक्सर लोग कहते हैं कि पे चेक तो हाथ में नहीं आता, बिल हाथ में आते हैं, ऐसे ही होता है ना। एक बंदा $5,000 कमाता है, अब आप देखिए उस घर में चार लोग हैं, चार लोग भी कम बे 4,000 भी कमाए, $15,000-16,000 उस घर में आया। आप कहेंगे तो बड़े साहूकार हैं, पर आपको क्या पता 16,000 उनकी इनकम है तो उसमें से 14-15 हज़ार की तो सिर्फ उनकी किस्त है, गाड़ी की किस्त, घर की किस्त, बिजली की किस्त, पानी की किस्त, एंड पे आपके पास 1,000 बचा बिल फर्ज, तो वो जो बेचारा कमाई 1,000 रहा है और उसको कोई किस्त नहीं देनी, वो नहीं अच्छा? सिंपल सी बात है। आपके ग्राउंड में आते हैं, जितना बड़ा राउंड खेलेंगे आप उतना घूमेंगे। अपना वक्त दीजिए अल्लाह को, अपनी जिंदगी का सुधा रखिए, का मामला कीजिए और खा के वही सोएगा। और बल्कि मैंने देखा जिनके पास इतने कर्जे लेन देन है तो उनकी तो भूख उड़ी रहती है, वो खा भी लेंगे कोई अच्छी चीज़ तो उनको मज़ा नहीं मिलता। तो यही बात इधर लिखी हुई है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कर्ज अदा कर दें तो फिर उसके लिए प्लान बनाएं। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी अगर आप चाहें। पहली बात है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप में से किसी के ऊपर एक पैनी का भी कर्ज होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको असूदा खाल किया, अल्लाह ताला मुबारक करे। लेकिन अगर आपने किसी से कुछ लिया दिया है पीछे बैक होम में जहाँ कहीं, तो आज से आप अपने पेमेंट प्लान सेट करें, बेचिए अपनी चीज़ें, अपनी जमा चुना चीज़ को जमा ख़त्म करें। हैरत तब होती है जब लोगों पे पहले ही कर्ज होता है फिर वो कोई और नई चीज़ भी खरीद लेते हैं। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, किसी के बारे में मुझे शक पड़ जाए ना कि उसके सर पे कर्ज है तो मुझे उसके घर से एक वक्त खाना खाना जिसमें उसका कुछ पैसा खर्च हुआ है डॉलर या भी, मुझे वो चुभेगा कि कितना अच्छा होता है अगर ये $10 अपने कर्ज वाली रकम में डाल के उसे निकाल देती। इसके ऑपोजिट मैंने लोगों को इतना लेयर रिलैक्स देखा है, कर्जा है सर पे लाख है लेकिन एक वक्त के खाने पे वो सैकड़ों खर्च कर देते हैं, एक ही दाँत तो वो कई हजारों के जोड़े ले लेते हैं, फिर इसका हक नहीं बनता। अगर वाकई आप कर्जों में फंस गए ना तो आपकी अकल मस्कीन हो, आपके चेहरे से मुफलसी और कलाशियत और गुर्बत दिखे, आप पकाते हैं तो मत पकाएं जब तक आपका कर्ज ना दूर हो जाए। जब हम इसको रिलैक्स लेकर लाइफस्टाइल बनाते हैं ना, इट्स अ प्रॉब्लम। और हमारे घरों के झगड़े, बेबरकती, बीमारी, मसला, एक आया दूसरा गया तीसरा, उसकी वजूहत ये है। वाकई कर्ज हो सकता है फिर सबसे पहली फुर्सत, नहीं भाई इस साल ईद पे जोड़ा नहीं बनेगा, इस साल हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये टिकट के पैसे जमा कर करा के इसको खत्म करेंगे फिर करें। और अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा मम्मी गोश्त, मम्मी पिज्जा, मम्मी बर्गर, बेटा कर्ज दूर होने के बाद। और ऐसी मैं लोगों को जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कहानियां मौजूद है, मेरे इर्द गिर्द लोग शेयर करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि किस तरह से इम्पॉसिबल उनके ऊपर घर का जो उन हस्बैंड वाइफ ने किस तरह से गुजारा है। और ये जो मैंने मिसाल दी मुझे उनमें से किसी की भी याद आ गए, कहते थे बेटा आज पिज्जा मंगा ले, नहीं अम्मी कर्ज दूर होने के बाद। और फिर जब पूरा घर पे ऑफ हुआ तो फिर उन्होंने बड़ी अच्छी शुक्राने में दावत की, अपने दोस्तों को बताया कि आज हम लोन फ्री हैं, सुकून आ जाता है और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ही, मैं आपको यकीन से कहती हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ ना मैं किसी का भेद जानती हूँ, लेकिन अल्लाह की सुन्नत को मैंने देखा है, ये सारे कर्जे दुख माली कमी बेशियां हमारी दुखों बीमारियों परेशानियों में आ जाती हैं। फिर अल्लाह ने पाक तो करना है ना, या फिर आगे जाके पाक करेगा। फिर हमें नहीं समझ आता ये आया वो किसी घर की किस्त के अंदर से आया होता है, ये बीमारी जो है ये गाड़ी की किस्त की है, ये जो आपका बच्चा इस वक्त अल्लाह ना करे इंजर्ड हो गया, ये आपकी गाड़ी हिट कर गई किसी जगह 1,000 का बिल आया, ये आपकी फलां मोटरसाइकिल की किस्त के अंदर से जो आपने कोई गड़बड़ का मामला किया था ना वो निकली है। निकल जाता है, कभी नहीं रहता। और ये उसके साथ होता है जिसको अल्लाह आखिरत में बचाना चाहता है। मैं कहती हूँ वो जो लोग दिल के खराब है ना, वो जो मर्जी करें, उनको पूरा हक है, दे शुड डू। नेक लोग, अच्छे दिल के लोग, खूबसूरत दिल के लोग, फिर उनको बहुत सख्तियां हैं दुनिया में। वजह क्या है? अल्लाह वांट टू प्यूरीफाई देम, या फिर वहां जाके करेगा या यहां करेगा, तो फिर मामला सीधा रख लें तो बेहतर है। तो हमेशा अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला बस मेरे साथ नरमी का मामला करना। अब जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं हमारे मर्द ऐसे नहीं सोचते, हमारी फलां बीवियां नहीं मानती ये, तो फिर दुआएं। अब अगला टॉपिक बड़ा अहम है, खूबसूरत टॉपिक है, क्या कर्ज की अदायगी करवाने वाली दुआओं की तालीम। मैं यहां छोटी सी बात आपके सामने रखूं, आप किसी को भी जानते हैं, अपनों में, प्यारों में, कर्ज में वो, आप जायज कर्ज की बात करते हैं, आपसे लिया या किसी से लिया, आज तक नहीं दे सके, आपको क्या आज इन तीन चार चीजों में से कोई एक वजह उसकी समझ आई है? आई है कि नहीं आई? दूध का दूध, पानी का पानी। अदायगी की नियत ही नहीं थी तो अदा कभी नहीं होगा। अभी तक नहीं हुआ ना, पिछले 5 साल से किसी ने लिया था तो उसके बाद भी नहीं होगा, वल्लाही। अंडरस्टैंड? दूसरी सूरत यह है कि आप किसी को देखते हैं कि कभी जिक्र ही नहीं करता कोई बात, सब मैंने देखा है लोग कर्ज लेते हैं बाद में ऐसे भूल ले कभी दिया ही नहीं, ठीक है, अच्छा कभी जिक्र करवा दें, या हाँ सच्ची देना है, बस हालात ठीक हो ले, बस जरा बच्चों का, या बेटी की शादी आ गई, बेटी की शादी जाके देखेंगे वो 5 करोड़ में वो शादी कर रहे होंगे, अच्छा बेटी की शादी, अब वो बच्चा होने वाला है ना उसकी शादी, कभी नहीं दे सकेंगे, अल्लाह के नबी ने आपको मुझे बता दिया। तो जब भी इंसान की दस्तरत से बाहर बात चली जाए ना, यानी बियॉन्ड योर अप्रोच या बियॉन्ड योर मीन्स, तो फिर दुआओं को पकड़े। वो एक जो चीज अपनी कोशिशों से नहीं मिलती उसको दुआओं से हासिल करेंगे। तो इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लम कितने एहतमाम करते थे, कर्ज की वापसी के लिए इस्लामी शरीयत का शदीद एहतमाम। इस बात भी वाज़े होता है कि नबी सल्लम उम्मत को बहुत सारी दुआएं सिखाते थे, इसमें से 3 दुआएं अभी हम सिर्फ पढ़ते फिर मांगेंगे फिर याद करेंगे इंशाल्लाह इनको। पहली दुआ इमाम तिरमिजी ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, एक मकातिब इनके पास है। मकातिब किसको कहते हैं? जो कुछ माल या खिदमत के बदले अपने मालिक के साथ आजादी का हसूल करता है। आप इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे सूरत नूर में कि जब कोई गुलाम गुलाम ना रहना चाहे तो अपने आका के पास आके कहता है कि देखो मैं आपको पैसे अदा करूंगा। मसलन एक गुलाम की कीमत थी, हर दौर में होती थी, 10,000 दिरहम का, आज की जुबान में समझते हैं कि अगर एक गुलाम $1,000 का मिलता है, अब वो सारी उम्र गुलाम ही रहेगा ना, मालिक उससे जो मर्जी ले। गुलाम को आ आती कहता है मैंने गुलाम नहीं रहना। अब वो मालिक के पास आता है कहता है मुझे आजादी चाहिए, तो मालिक कहता है मैंने तुम्हें 1,000 का खरीदा, तो कहेगा अच्छा ठीक है मैं आपको 1,000 वापस करूंगा, तो आप मुझे फिर जिस दिन 1,000 पूरा हो जाएगा वापस कर देंगे। अच्छा का कैसे करोगे? आज से जो मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं डेली वेजिस हिसाब लगा ले, अमेरिका में रहते हुए अगर एक दिन कोई काम करता है बिलफर्ज उसके $50 है, तो कहता है आज सुबह से काम करूंगा मैं, आपसे पैसे नहीं लूंगा, लेकिन एंड पे जो $50 बनेंगे ना वो आप मेरे काटते जाए। जब 50 काट दिए, दूसरे दिन के 50 काट दिए, 100 काट दिए, इतने जो ही अपनी कीमत अदा कर लूंगा तो आपसे फिर मैं। और जब कोई गुलाम अपने आका को ये ऑफर दे तो मालिक पे फर्ज है कि इसको कबूल करे, इसको मुकातबत कहते हैं। आप कभी गुलामी का इस्लाम का खूबसूरत तरीका पढ़ के देखें, इमेजिन नहीं कर सकते कि ये रूल किसने बनाए होंगे। फिर मालिक नहीं रह सकते क्योंकि किसी को गुलाम आप बना नहीं सकते, आपने पैसों का लिया है ना, तो जब अगला बंदा आपको पैसे वापस कर रहा है तो फिर आप ले ले। इसीलिए कहा कि खुद भी उसमें मदद करो, वो कहता है अच्छा चलो 1,000 का लिया था, चलो 200 मैं पैसे छोड़ता हूँ, 800 वापस कर दो, ठीक है। फिर आपको मुझे भी ऐसे गुलामों की मदद करने की रगबत दिलाई कि तुम उनको से दे के आजाद करा दो। तो ऐसे ये शख्स जो थे ये मुकातिब थे। देखिए शायर कहने लगा इन्नी कदा जस तो अन किताबती फाइननी, मैं हसूल आजादी के लिए तय शुदा रकम अदा करने से आजिज हो गया हूं, बस आप मेरे साथ तावन कीजिए। बात वाज़े, मालिक को कहा था तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तो असलन दे नहीं पा रहा, ठीक है पैसे इतने तो मेरी मदद कीजिए। उन्होंने फरमाया क्या मैं तुम्हें वो कमात ना सिखा दूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए थे, अगर तुम्हारे जिम्मे जबले सिर के बराबर भी कर्ज हो तो अल्लाह ताला इन कलेमात की वजह से अदा कर देंगे। अब ये जबले सिर एक पहाड़ का नाम है, तो कहा कि अच्छा मांगो बल्कि ये कलेमात पढ़ लो तो तुम्हारा कर्ज अदा होगा, तो कहा पढ़ो। फरमाया तो तुम कहो, आप भी मेरे साथ दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्मा क्फिनी
اللهم اغفري
بحلالك
بحلالك
عن حرامك
عن حرامك
وأغنني
أغنني
بفضلك
بفضلك
عمن سواك
عمن سواك.
اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے میری کفایت کر دیجئے. یہ نوٹ کیجئے گا, بڑی پیاری دعا ہے یہ. ہر چیز کے حرام سے آپ بچیں. حلال کے ساتھ, لفظ حلال پہ غور کیجئے گا, حرام کردہ چیزوں سے میری کفایت کر دیں, یعنی جو چیزیں حرام ہیں مجھے وہ لینی ہی نہ پڑے, اور تو اپنی طرف سے حلال مینس میرے لیے بنا دے, اور اپنے سوا مجھے ہر شخص سے بے نیاز کر دے. آمین. اس کو آپ بعد میں بھی پریکٹس میں یاد کریں گے. ایک اور دعا, امام طبرانی نے انس بن مالک سے روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اور تم اس دعا کے ساتھ فریاد کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو تم سے ادا کروا دیں. اب دیکھیں نا, اس دور میں پہاڑ ہی دکھتا تھا نا, اور آج پہاڑ بہت بڑی چیز ہے. تو آپ نے یہ دعا سکھائی, قل یا معاذ, آپ نے کہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ آیت بھی ہے سورت آل عمران کی 15-16 نمبر کی آیت ہے. چلے میرے ساتھ ساتھ دہرا لیجیے آپ لوگ ایک بار, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اب یہاں تک دیکھیے قرآن کی آیت ہے نا, اب یہ اگلے لفظ, یہ حدیث کے ایکسٹرا لفظ ہیں, رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواك. اے اللہ, بادشاہی کے مالک, آپ جس کو چاہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں اور جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں. آپ جس کو چاہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جس کو چاہیں ذلیل کرتے ہیں. تمام خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, بلا شبہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اے دنیا و آخرت کے نہایت مہربان, انتہائی رحم فرمانے والے, آپ جس کو چاہیں وہ دونوں عطا فرماتے ہیں, دونوں سے مراد دنیا, اور جس سے چاہے ان دونوں میں سے روک لیتے ہیں. مجھ پر ایسی رحمت فرمائیے کہ اس کے ساتھ آپ مجھے اپنے سوا ہر کسی کی رحمت سے بے نیاز فرما دیں. کتنی خوبصورت دعا ہے, آپ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد, اور اب تو کارڈ ہاتھ میں آ گئے. اور میں کہتی ہوں آپ اپنی دوستوں کو یہ گفٹس میں دیجئے, یہ دعا آپ کے کارڈ کے اندر یہ بیگ پہ لکھی ہوگی. اس میں ابھی اس کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں, یہ آپ کے لیے صرف ابھی اس کو فل اپ کرائے گی یہ, تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پوری یقین سے پڑھیں, جب پڑھیں تو اس وقت امیجن کیجئے اللہ کی بات ہی کو, اللہ کی خزانوں کو, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے. آپ کے اتنا کچھ ہے, آپ نے تو فلاں کو یہ بھی دیا, وہ تو دنیا کے اندر گناہوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے لیے دین کے ان کاموں کو آسان کر دیں. میں تو اکثر کبھی بھی کوئی ایسی دعا تو الحمدللہ جاتی تو کبھی نہیں, لیکن دین کے نام پہ جو بھی ظاہر ہے کہ اپنے اوپر قرضے ہوتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں, تو اس کے لیے نیت کر لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ ہمیں ایک جگہ دلوا دیں. اللہ جی جگہ دلائی ہے تب اس کے پیسے دلا دیں, پیسے ہیں تب اس کی مینٹیننس دلا دیں, مینٹیننس ہے تو خرچہ دلا دیں, کیا مشکل ہے. آپ خود سوچیں نا, اتنی بڑی دنیا کے آگے آپ اس کو ایک بڑی ہیوج بلڈنگ بھی کہہ لیں تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے, نتھنگ. صرف آپ کا اپنا ایمان ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت, امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان فرمایا, فاطمہ رضی اللہ عنہ خادم طلب کرنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, تو آپ نے ان سے دریافت کیا, جو چیز تم طلب کرنے آئی ہو وہ تمہیں زیادہ پسند ہے یا اس سے بہتر چیز, یعنی غلام ہی مل جائیں یا اس سے بھی کوئی بہتر چیز. انہوں نے بیان کیا, یعنی حضرت ابو ہریرہ نے, میرا گمان ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا کہوں, اچھی بیوی تھی جو شوہر سے مشورہ کر کے پوچھ رہی ہیں. ہاں, قال قولی, کہنے لگی نے پھر ان کو کیا کہا, تم کہو, قولی کیا ہے, एक औरत को कहा जाए ना जैसे कुल कुल, तो हजरत अली से उन्होंने कहा मैं पूछूंगी, बाहर अल्लाह के नबी ने ये दुआ अपनी बेटी को सुनाई सिखाई, पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाती व रब्बल अर्शिल अजीम रब्बना व रब्ब कुल्ली शैइन मुंजिलत तौराती والإنجيلي والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس وأنت الظاهر فليس فوقك شيء الباطن فليس دونك شيء اقضينا الدين واغنينا عن الفقر. बहुत प्यारी दुआ है, ये भी आपके इस कार्ड के अंदर मौजूद है दुआ नंबर 6 में, तो इसको इंशाल्लाह आप याद करेंगे. इसका तर्जमा देखिए कितना प्यारा है, और जो दुआ आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं वो खूबसूरत ना होगी. आपने इरशाद फरमाया, तुम कहो ए अल्लाह आसमानों के रब और अर्शे करीम के रब और ए हमारे रब और हर चीज के रब, ए रब तौरात इंजील और कुरान नाजिल फरमाने वाले, ए दाने और गुठली को फाड़ने वाले, मैं हर उस चीज की शर से आपकी पनाह तलब करता हूँ कि आप इसकी पेशानी को पकड़ने वाले हैं. क्या मतलब है पेशानी को पकड़ना? दो मानी है, एक तो यह कि उसकी तकदीर बनाने वाले हैं, और दूसरा ये कि वो आपके कंट्रोल में है. इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद को फीलिंग में लाइए, मतलब ये कि हर बड़ी से बड़ी चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है. आप अव्वल हैं और आपसे पहले कोई चीज़ नहीं, आप आखिर हैं कि आपके बाद कोई चीज़ नहीं, आप जाहिर हैं और कोई चीज़ आपसे ऊपर नहीं, और आप बातिन हैं कि कोई चीज़ आपसे ज़्यादा पोशीदा नहीं. ये सारी अल्लाह ताला की सिफात सूरह हदीद में बहुत खूबसूरत तरह से आती हैं. करें क्या, अब देखिए ना, अल्लाह को इतना कुछ करके कुछ मांगना है ना, तारीफें की है ना कि आपसे क्या मुश्किल, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ, आपसे हम क्या छुपाएं, तो हमारी तरफ से कर्ज अदा फरमा दीजिए और हमें फकर से गनी फरमा दीजिए. सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है. तो ये दुआएं इंसान को फायदा देती हैं. मुश्किल लगे तो एक एक करके पढ़ें, याद करके लें, एक दूसरे के साथ आप इसको दोहरा सकते हैं.